राजा विक्रम सिंह की काली नज़र राधा पर पड़ जाती है और वो राधा की शादी के दिन ही उसके पति मोहन को मरवा देता है। राजा विक्रम सिंह को हर हाल में राधा चाहिए, इसलिए उसने अपनी पूरी फौज राधा को ढूंढने में लगा रखी थी। मोहन की आत्मा से बात करके राधा को कुछ तसल्ली हो जाती है। मोहन उसे कहता है, राधा सिर्फ मोहन की है, हम अब इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, हम दोनों अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और वो राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह राधा की ही रट लगाए रखता है। ये सुनकर उसके दरबार में बैठे हुए उसके लगभग 400 दरबारी परेशान हो उठते हैं। तभी एक आदमी दूसरे आदमी के कान में कहता है, जब से महाराज इस बार जंगल से आए हैं तब से कुछ पागल से गए हैं, केवल एक ही जिद लगाए हुए हैं, राधा चाहिए राधा चाहिए, पता नहीं कौन है ये राधा। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह राधा को लेकर परेशान थे। कोई कह रहा था, अब जरा हम भी तो देखें आखिर है कौन ये राधा जिसने अपने हुस्न के जाल से हमारे महाराज को पागल कर दिया है। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रहा था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक दरबारी वहां आकर कहता है, महल के दरवाजे पर कोई राधा आई है, महाराज से मिलना चाहती है। तभी एक दरबारी दरबार में आता है और 3 बार महाराज को झुककर सलाम करता है। उसके बाद राजा विक्रम सिंह कहता है, हाँ बोलो क्या समाचार लाए हो। तब वो दरबान कहता है, महाराज एक औरत महल के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और वो अपना नाम राधा बता रही है और कह रही है, जाओ जाकर अपने महाराज से कहो राधा आई है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखें चमक उठती हैं और वो जल्दी से कहता है, जाओ जल्दी जाकर उसे अंदर लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। महाराज के इतनी बार जल्दी जल्दी बोलने से वो दरबान दौड़ता हुआ बाहर भाग जाता है और जितने भी दरबारी वहां बैठे हुए थे उन सब में एक हलचल सी मच जाती है और सबके सब राधा को देखने के लिए बेचैन हो उठते हैं कि आखिर है कौन ये राधा जिसके हुस्न ने उनके महाराज को अपना दीवाना बना रखा है। हर किसी की नज़र दरवाजे की ओर ही थी, हर कोई ये देखने के लिए बेचैन था कि आखिर है कौन ये राधा और दिखती कैसी है। जल्दी ही दरबारी एक लड़की को लेकर अंदर आता है जिसके पैरों से खून निकल रहा था और उसके सारे कपड़े एकदम काले हो चुके थे। उसके रेशमी बाल एकदम किसी चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे थे और उसके मुंह पर काले काले धब्बे के निशान थे। हर कोई हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जिसका पूरा का पूरा जिस्म और चेहरा काला पड़ चुका था। एक दरबारी को उसकी हालत देखकर उल्टी आने लगती है, वो बहुत बुरी और एकदम भद्दी सी लग रही थी। तभी एक मंत्री उस दरबान से कहता है, तुम्हारी क्या मति मारी गई है जो तुम इस भिखारिन को यहाँ उठाकर ले आए हो, तुम्हें ये कहाँ से स्वर्ग की अप्सरा दिख रही है, ये तो किसी गली गांव की भिखारिन है। सभी दरबारी अपनी अपनी भाषा में राधा को जो मुंह में आ रहा था वो बोल रहे थे। तभी महाराज विक्रम सिंह अपना हाथ खड़ा करते हैं और तेज आवाज में चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ सबके सब। तब राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठते हैं और उस भिखारी से दिख रही राधा के आसपास चक्कर लगाकर उसे चारों ओर से देखने लगते हैं और सभी दरबारी ये देखकर आपस में कुसुर-फुसुर करने लगते हैं और बोल रहे थे, ये राजा साहब को क्या हो गया है, इस भिखारिन के आसपास क्यों टहल रहे हैं। तभी विक्रम सिंह की आवाज़ वहां गूंजती है और वो तेज आवाज में चिल्लाता है, जाओ और जाकर दूध लेकर आओ। जितने भी लोग थे वे सब हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। राजा विक्रम का हुक्म था तो जल्दी ही ढेर सारी मात्रा में दूध वहां लाया गया था और एक बहुत बड़ा सा टोकरा टाइप या ये कह लीजिए छोटा सा स्विमिंग पूल वहां लाया गया। राजा ने उसे उस गोल से पूल में खड़ा किया और हुक्म दिया, इसके ऊपर दूध डालो। ये सुनते ही 2 औरतों ने राधा के ऊपर दूध डालना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते राधा के जिस्म और कपड़ों पर लगी हुई कालिक छूटने लगती है और देखते ही देखते राधा का दूध जैसा गोरा रंग एकदम से निखर कर सामने आ जाता है और देखते ही देखते उसके कपड़ों का सारा कालापन धीरे धीरे खत्म हो चुका था। राधा पूरे 3 दिन और रात चलते चलते वहां तक आई थी जिसकी वजह से उसके कपड़े और उसका जिस्म एक एक करके काला पड़ता चला गया था और उसके रेशमी बाल बेहद रूखे और बेजान हो गए थे। दूध गिरने की वजह से अब राधा का जिस्म पहले से भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत हो गया था और उसके लाल जोड़े पर जमी हुई मिट्टी सब उतर गई थी। राधा का ये रूप देखकर सभी दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा था। अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर उन सबके मुंह में पानी आने लगा था। जो राधा को भिखारिन कह रहे थे उन सबको तो मानो सांप सा सूंघ गया था। राधा को देखने के लिए सब में होड़ सी मच गई थी। उन सब का बस चलता तो अब तो वे राधा पर टूट चुके थे, लेकिन राजा के डर की वजह से किसी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। राजा विक्रम सिंह वहां मौजूद सबकी नजरें भांप चुका था और उसने दरबारियों को आदेश दिया कि इसी वक्त सबके सब इस सभा का त्याग करें। ये सुनकर उन सभी दरबारियों के दिल टूट गए और ना चाहते हुए भी उन सबको वहां से जाना पड़ा था। किसी का भी मन नहीं था वहां से जाने का। राधा की एक झलक पाने के लिए वे सब बेताब थे। राधा को दूध से नहलाने के बाद उसके जिस्म का एक एक कपड़ा उसके शरीर पर चिपक गया था, जिससे उसका जिस्म कपड़ों के साथ भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ताज़ा विक्रम सिंह राधा को कितनी ही देर तक लालायित नज़रों से देखता रहा और उसके बाद उसने कुछ दासियों को बुलाया और बोला, हमारे खास मेहमान को लेकर और अच्छे से खिला पिलाकर इन्हें शाही जोड़ा पहनाओ। हम आज ही इनसे विवाह करेंगे। आज के बाद ये हमारी महारानी होगी। जितने भी लोग दासी दास वहां मौजूद थे, ये सुनते ही उन सबने राधा के सामने अपना सिर झुका लिया था और कुछ दासियां राधा को ले गई थी। राधा ने एक भी शब्द नहीं बोला था, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। राधा एकदम खामोशी के साथ उस दासी के ठीक पीछे पीछे चल पड़ी थी। अचानक राधा को कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। राधा ने आसपास देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। और जैसे ही वो बड़े बड़े दालान को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, उसकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और ऑटोमेटिक उसके कदम उसी ओर चल दिए थे। उस दासी को पता भी नहीं था कि उसकी होने वाली महारानी उसके पीछे नहीं थी। राधा उन चीखों का पीछा करती हुई एक बड़े से अलग पोर्शन में पहुंच जाती है, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। तारापरी और अमन वो भी राधा के साथ साथ चल रहे थे। तारापरी का ध्यान तो उस ओर हुआ तो राधा भी उसी ओर देखने लगती है। तभी राधा को एक मोड़ पर कुछ रोशनी सी नजर आती है। राधा उस ओर ही चली जाती है। राधा को वहां जाकर और तेज सिसकियों की आवाज आने लगती है और राधा ने जैसे ही वो रोशनी वाला पोर्शन पार किया, तभी उसे एक बहुत बड़ा दालान मिला जहां पर हल्की हल्की रोशनी थी। राधा उस ओर गई, तभी वहां उसे दो सैनिक दिखाई देते हैं। राधा अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो यहां से कैसे निकले, क्योंकि जिस ओर वे सैनिक बैठे हुए थे उसी ओर से सिसकी और हल्के हल्के खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा ने कुछ देर तक कुछ सोचा और सोचकर वो उसी ओर चल पड़ी थी।
जैसे ही सैनिकों ने राधा को देखा, वे एकदम से झुककर राधा को सलाम करने लगते हैं। राधा ने कहा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? राधा की ये बात सुनकर वे दोनों सैनिक आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वे जानते थे इस वक्त जो उनके सामने खड़ी हुई है वो इस राज्य की होने वाली महारानी है। इस बात का महल के अंदर जितने भी सैनिक दासी दास थे उन सबको पता चल चुका था। वे दोनों कुछ जवाब ना देकर एक साइड में खड़े हो गए थे। राधा ने फिर से उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी और वो आगे बढ़ गई थी। और जैसे ही राधा ने पोर्शन क्लियर करके अगले पोर्शन में गई, उसकी मानो जैसे सांस ही थम सी गई हो। राधा अंदर का नज़ारा देखकर एकदम से शॉक होती है, क्योंकि उस जेल नुमा जगह पर कम से कम अंदर 300 से ज़्यादा औरतें थीं जो वहाँ एकदम नंगी सी हालत में थीं। राधा को देखकर वे औरतें और तेज़ तेज़ रोने लगती हैं। राधा को उन्हें देखकर बहुत रहम आ रहा था। राधा को उनकी हालत पर बड़ा ही तरस आ रहा था। वहाँ हर तरह की औरत थी, कोई कम उम्र की तो कोई एकदम जवान जिसने नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। तभी राधा ने देखा उस जेल के सामने छोटे छोटे कुछ कक्ष बने हुए थे और उनमें से कुछ आदमी जो राजा विक्रम सिंह के मंत्री, वजीर और दरबारी, कुछ सैनिक थे जो उन कक्षों में से बाहर निकल रहे थे अपने कपड़े ठीक करते हुए। राधा को उन लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि राधा छुप गई थी। उन लोगों को अपने कपड़े ठीक करते देख राधा को कुछ शक हुआ और उनके जाने के बाद राधा उन कक्षों तक गई और उसने देखा अलग अलग कक्ष में एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की औरतें थीं जो उस कक्ष में पड़े हुए एक तख्त पर नग्न अवस्था में पड़ी हुई रो रही थीं। राधा के उन्हें इस हालात में देखकर रोना आ गया था और वो सोचने लगी थी, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है इन औरतों के आगे। नहीं नहीं, मैं राधा हूँ, तपस्वी महाराज की बेटी, एक शक्तिशाली योद्धा मोहन की पत्नी। मेरे रहते इन औरतों की ऐसी दशा, नहीं नहीं, मैं इस राजा का अंत कर दूंगी, उसे इन औरतों की जिंदगी से इस तरह नहीं खेलने दूंगी। दोस्तों, अगर आपको तारापरी की कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बाकी की स्टोरी को भी अपना ढेर सारा प्यार दें।